आज रात मेरा टॉपिक है प्रार्थना को जंग जीतने के हथियार के तौर पर समझना। तो जंग जीतने के हथियार के तौर पर प्रार्थना को समझना। आप जानते हैं एक जंग लड़नी है और आपको एक मिनिस्टर के तौर पर यह समझना होगा क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत होती है। धर्मग्रंथ कहता है जैसे अच्छे सैनिक मुश्किलें सहते हैं। और फिर भजन 74 और आयत 20 में धर्मग्रंथ कहता है वादे का आदर करो क्योंकि धरती की अंधेरी जगहें बेरहमी के ठिकानों से भरी हैं। धरती की अंधेरी जगहें वे जगहें जहां गॉस्पेल नहीं पहुंचा था बेरहमी से भरी हैं। वे धरती की अंधेरी जगहें हैं बेरहमी ऐसी जगहें जहां शैतान इंसानों की जिंदगी को मैनिपुलेट करते हैं और बर्बाद करते हैं और इंसानों को भगवान की अच्छाई से दूर रखते हैं। और जब आप सेंट ल्यूक चैप्टर 11 आयत 23 में पढ़ते हैं तो मैं मैसेज का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं और उसमें लिखा है यह जंग है और कोई न्यूट्रल जमीन नहीं है। अगर तुम मेरी तरफ नहीं हो तो तुम दुश्मन हो। अगर तुम मदद नहीं कर रहे हो तो तुम चीजों को और खराब कर रहे हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम चीजों को और खराब कर रहे हो। कहते हैं यह युद्ध है। युद्ध है। हम एक राज्य से हैं परमेश्वर के राज्य से और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस राज्य में फैलने और कब्जा करने के मकसद से यही सार है और सुसमाचार के हर मंत्री को यह समझना चाहिए और राज्य को बढ़ाने के इस मकसद के बारे में होना चाहिए और यहीं से फिर से सेवा शुरू होती है। मैं जल्दी से हमें युद्ध को समझने के साथ मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमें युद्ध को समझना होगा या सबसे पहले यह जानना होगा कि युद्ध है। युद्ध को समझें वे प्रार्थना को देखेंगे तो 7 मुख्य कारण हैं। पहला यह समझना कि राज्य एक आध्यात्मिक राज्य है। हम एक राज्य से हैं और यह राज्य एक आध्यात्मिक राज्य है एक पवित्र राज्य है। अब सेंट जॉन चैप्टर 18 और आयत 10 में कहते हैं यीशु ने कहा मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदी नेताओं द्वारा मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लड़ते। लेकिन अब मेरा राज्य दूसरी जगह से है। यह कहता है मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। हम एक आध्यात्मिक राज्य से हैं और यह वह राज्य है जिससे हम हैं। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि किंगडम स्पिरिचुअल है और हम एक स्पिरिचुअल किंगडम से हैं। और फिर उस दूसरे पॉइंट में दुश्मन स्पिरिचुअल है। यह फिजिकल नहीं है यह स्पिरिचुअल है। हमारा एक दुश्मन है। हमारा एक दुश्मन है वह स्पिरिचुअल है। किंगडम स्पिरिचुअल है। दुश्मन स्पिरिचुअल है। इफिसियों चैप्टर 6 की आयत 12 कहती है क्योंकि हम मांस और खून से नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स से पावर्स से इस दुनिया के अंधेरे के रूलर्स से ऊंची जगहों पर स्पिरिचुअल बुराई से लड़ते हैं। अब वह इन स्पिरिचुअल दुश्मनों की अलग अलग कैटेगरी बताता है। यह कहता है उन प्रिंसिपल्स पावर्स अंधेरे के रूलर्स और स्पिरिचुअल बुराई बुरी आत्माएं ये दुश्मन हैं। दुश्मन शैतान है। डेविल स्पिरिचुअल है। हमने अभी अलग अलग कैटेगरी प्रिंसिपल्स पावर्स अंधेरे के रूलर्स और स्पिरिचुअल बुराई के बारे में पढ़ा। तो हम सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह कहना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन के तौर पर एक लड़ाई में लगे हुए हैं। आप एक सैनिक हैं और एक अच्छे सैनिक के तौर पर आपको मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और सैनिकों के तौर पर आपको यह समझना होता है कि आप किस तरह के राज्य से हैं। यह एक स्पिरिचुअल राज्य है और दुश्मन स्पिरिचुअल है। और फिर युद्ध खुद एक फिजिकल युद्ध नहीं है, युद्ध स्पिरिचुअल है। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 3। क्योंकि भले ही हम शरीर के हिसाब से चलते हैं, हम शरीर के हिसाब से नहीं लड़ते। दुनिया स्पिरिचुअल है। हम फिजिकल इलाकों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों और देशों की आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं। हम आत्मा के दायरे में उन संस्थाओं के खिलाफ हैं जिन्होंने भगवान के दिव्य मकसद के खिलाफ इसे कंट्रोल करने के लिए हवा में स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसीलिए भगवान ने हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दी, यीशु के नाम का अधिकार दिया, ताकि शैतानों को बाहर निकाला जा सके और इन बुरे लोगों को रोका जा सके। और यही हमारा अधिकार है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, सेंट मैथ्यू चैप्टर 16 और वर्स नंबर 18, और फिर आप यिर्मयाह 51 और वर्स 20 भी लिख सकते हैं, और आप यह भी लिख सकते हैं कि आप सेंट लिख सकते हैं मार्क चैप्टर 16 वर्स 17। बस उन्हें लिख लें, यह हमें हमारी अथॉरिटी दिखाता है। लेकिन यह समझें कि हम देशों के लिए लड़ रहे हैं, हम इंसानों की आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, उन स्ट्रक्चर्स के खिलाफ जो इस धरती को कंट्रोल करने के लिए, इंसानों और इस धरती को भगवान के डिवाइन मकसद के खिलाफ कंट्रोल करने के लिए स्पिरिट के दायरे में बनाए गए हैं। तो हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम स्पिरिचुअल इंसान हैं, और हम एक स्पिरिचुअल किंगडम से हैं और दुश्मन स्पिरिचुअल है, लड़ाई स्पिरिचुअल है। इसलिए हमें यह समझना होगा। और फिर नंबर 4, हथियार स्पिरिचुअल हैं। दूसरा करेटास चैप्टर 10, मैं वर्स 4 से पढ़ रहा हूँ, और यह कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि वे इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन वे भगवान के जरिए ताकतवर हैं, मजबूत गढ़ों को गिराने के लिए, कल्पनाओं और हर ऊंची चीज को जो भगवान के ज्ञान के खिलाफ है, गिराने के लिए, और हर विचार को कैद में लाने के लिए जो क्राइस्ट की आज्ञाकारिता में है। हमारे हथियार इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं, वे फिजिकल नहीं हैं, लेकिन वे ताकतवर हैं। परमेश्वर के वचन बोलने से परमेश्वर शक्तिशाली है, वे परमेश्वर के वचन बोलने से मजबूत हैं और मजबूत किले गिरा देते हैं। हमारे पास हथियार हैं, हम खाली नहीं हैं, हम सैनिक हैं। हमारे पास हथियार हैं और हमारे हथियार आध्यात्मिक हथियार हैं, और इन हथियारों से हम कल्पनाओं को गिरा देते हैं, और हर चीज, हर ऊंची चीज जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ होती है। फिर पांचवा, युद्ध इंसानों की आत्माओं और व्यवस्था के बारे में है। इंसानों के लिए परमेश्वर की दिव्य इच्छा, इस पर ध्यान दें। आप जानते हैं कि हर युद्ध इलाके के बारे में होता है। यह किसी दूसरे पर कब्जा करने या उसे हटाने या अपनी जमीन बनाए रखने के बारे में है, और सुसमाचार के सेवकों के तौर पर आपको यह समझना चाहिए कि चर्च एक आगे बढ़ता हुआ राज्य है। चर्च एक आगे बढ़ता हुआ राज्य है। हमारा एक दुश्मन है और लड़ाई इंसानों की आत्माओं के लिए है। हम ही वे हैं जिन पर परमेश्वर निर्भर है। हम ही वे हैं जिन्हें तैयार किया गया है। हमारे पास हथियार हैं। हमारे पास वह नजरिया है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए धरती पर छोड़ा गया है। हमारे पास एक दुश्मन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान के पवित्र मकसद को खत्म करता है और उसके खिलाफ काम करता है। इसीलिए हम यहाँ हैं और दुनिया इसी के बारे में है। धर्मग्रंथ कहता है यह भगवान का तरीका है कि सभी इंसान बचें और सच्चाई को जानें। और हम सब इसी के बारे में हैं, इंसानों की आत्माओं के लिए चिंता कर रहे हैं, इंसानों की आत्माओं के लिए, क्योंकि यह भगवान का तरीका है कि हर इंसान बचे। आप जानते हैं हम आखिरी घड़ी में हैं। यह आखिरी घड़ी है। यह आखिरी फेज है और यह बहुत जरूरी समय है। चर्च के इतिहास में और इस साल जैसा कि हमें बताया गया है, जैसे हमें भगवान के रूहानी आदमी ने निर्देश दिया है, यह वह साल है जब हम पूरी तरह से गॉस्पेल का प्रचार करेंगे और इसे पूरा करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करें। नंबर 6, हम सैनिक हैं और सैनिकों के तौर पर हम दो दुनियाओं में रहते हैं। हम दो दुनियाओं में रहते हैं जहां हम आत्मा के दायरे से चीजों को कंट्रोल करते हैं, भले ही हम किनारे पर हों। कंट्रोल है, हमारे पास आत्मा के दायरे में अधिकार के दायरे पर अधिकार है। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 3 कहता है, क्योंकि भले ही हम शरीर के हिसाब से चलते हैं, पर शरीर के पीछे नहीं चलते। और फिर नंबर 7, स्ट्रेटेजी स्पिरिचुअल हैं। आप इसे इफिसियों चैप्टर 6 के वर्स 13 से 20 तक पढ़ सकते हैं। इसमें इसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। और अब यह हमें प्रार्थना को एक हथियार और दुनिया जीतने की एक दिव्य स्ट्रेटेजी के तौर पर लाता है। अब 2 कुरिन्थियों 10:3-5 और जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 एम्प्लीफाइड क्लासिक। मैं जेम्स 5:16 पढ़ूंगा और उसमें कहा गया है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां, अपने गलत कदम, अपने गुनाह, अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो ताकि तुम ठीक हो जाओ और मन और दिल की स्पिरिचुअल टोन में वापस आ जाओ। एक नेक इंसान की सच्चे दिल से की गई लगातार प्रार्थना जबरदस्त शक्ति देती है उसके काम करने में डायनामिक। ओह वाह, इसका मतलब है कि हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह हमें कुछ दिखाता है। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थनाओं से क्या कर सकते हैं? यह सच्ची दिल से लगातार प्रार्थना के बारे में है। यह बीच बचाव की बात करता है। एक नेक इंसान की प्रार्थना से जबरदस्त शक्ति मिलती है और यह शक्ति तेजी से काम करती है। हम प्रार्थनाओं से चीजें बदलते हैं। इस दुनिया में हम चीजें बदलते हैं। हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जबरदस्त शक्ति पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम नेक होते हैं, वह हमारी सुनता है, हमें अधिकार दिया गया है, हमें ताकत दी गई है, हम शक्ति से भरे हुए हैं और जब हम बोलते हैं तो हम बदलाव लाने के लिए शक्तिशाली शब्द बोलते हैं, हम आदेश देते हैं, हम अधिकार से बने हैं, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रार्थना की जगह पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शक्ति पाते हैं। इसलिए हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जबरदस्त शक्ति पाते हैं जो अपने काम में तेजी से काम करती है। और इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना में पैदा हुई या बनाई गई परमेश्वर की शक्ति कई तरह से काम करने वाली और असरदार है। यह एक जैसी नहीं है। यह किसी भी स्थिति को अपना लेती है और उस पर जीत हासिल कर लेती है। यही है। और आपके मन में यह बात है। इससे मैं चार तरह की प्रार्थनाओं पर आता हूँ जिनके बारे में एक तीमुथियुस चैप्टर 2 में बात की गई है, और वह है एक तीमुथियुस चैप्टर 2 की आयत 1-4 में प्रार्थना की गुजारिश। इसलिए सबसे पहले यह कहा जाता है कि सभी लोगों के लिए गुजारिश, प्रार्थनाएं, गुजारिश और धन्यवाद दिया जाए। अब यहाँ बताया गया है कि किस तरह की प्रार्थनाएं, गुजारिश और धन्यवाद दिया जाता है। ये शास्त्रों में प्रार्थनाओं की कैटेगरी हैं। इफिसियों चैप्टर 6 की आयत 18 देखें जो कहती है, और सभी जगहों पर सभी तरह की प्रार्थनाओं और रिक्वेस्ट के साथ आत्मा में प्रार्थना करें। हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। गुजारिश, प्रार्थनाएं, गुजारिश और धन्यवाद देना। हमारे पास इन सभी डिटेल्स में जाने का समय नहीं है, लेकिन जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अलग अलग तरह की होती हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ज्यादातर आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अब 5 खास बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप नोट करें। हमारे देश या देशों के लिए 3 में नोट करें। नंबर 1, दुश्मन के नेचर को समझें। आप जानते हैं कि हमने इफिसियों के चैप्टर 6 और वर्स 12 में पढ़ा है और उसमें लिखा है, हम खून पसीने से नहीं बल्कि राज करने वालों से, ताकतों से और राज करने वालों से लड़ते हैं। इस दुनिया में ऊंची जगहों पर आध्यात्मिक बुराई के खिलाफ। और फिर 1 कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्स 32 में पॉल यह कहता है, क्योंकि मैंने इफिसुस में सफेद जानवरों से लड़ाई लड़ी जिसमें इंसानी उम्मीदों से ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे क्या मिला? अगर मरे हुए जिंदा नहीं होते तो चलो खाते पीते हैं, क्योंकि कल तो मरना ही है। यह 4th जंगली जानवर के बारे में बात करता है जो आध्यात्मिक लड़ाई का जिक्र करता है। यह जानवरों की तरह फिजिकल जानवरों का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि यह आध्यात्मिक बुराई का जिक्र कर रहा है। आध्यात्मिक जीव जो शरीर के खिलाफ नहीं बल्कि राज के खिलाफ, ताकतों के खिलाफ, अंधेरे के शासकों के खिलाफ और आध्यात्मिक बुराई, बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए दुश्मन के स्वभाव को समझें। और फिर दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है, आत्मा में ज्यादा। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 2 कहता है, हम क्योंकि जो अनजान भाषा में बोलता है वह इंसानों से नहीं बल्कि भगवान से बात करता है, क्योंकि कोई उसे नहीं समझता, फिर भी वह आत्मा में रहस्य बोलता है। हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। भगवान के एक आदमी ने पहले हमारे साथ प्रभु के बारे में शेयर किया था। हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हर तरह की प्रार्थनाएं, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना, क्योंकि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो यह आपकी आत्मा ही है जो प्रार्थना करती है। यह आपकी आत्मा है जो प्रार्थना करती है, और यह केवल भगवान ही है जो उस भाषा को समझता है जो आप बोल रहे हैं। यह भगवान की भाषा है जो हमें उससे बात करने के लिए दी गई है। यह एक कठिन लाइन है, इसलिए हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में और अधिक प्रार्थना करते हैं। ट्रेनिंग की बातें बहुत बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी इंसानी समझ से परे होती हैं। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप रहस्य बोल रहे होते हैं, आप भगवान के गहरे रहस्य बोल रहे होते हैं। आप उस स्थिति या उस हालत के बारे में भगवान की समझदारी बोल रहे होते हैं, और इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है। यह बीच बचाव करने में हमारे देशों के लिए या हमारे शहरों, हमारे कस्बों के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करने में जरूरी है, और हम इंसानों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे। यह दुनिया है, हमें दुनिया को जीतना है। और फिर तीसरा पॉइंट है लगातार प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना। आप जानते हैं जेम्स के चैप्टर 5 में जहां हम पढ़ते हैं, वहां कभी न खत्म होने वाली दिल से और दिल से लगातार प्रार्थना करने की बात की गई है। इसका मतलब है बीच बचाव वाली प्रार्थनाएं। जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो यह लगातार प्रार्थना होती है, यह एक बार की प्रार्थना नहीं है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो हम करते हैं और हम जोर देते हैं और हम लगे रहते हैं और हम इसे करते रहते हैं, और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें। रोमन्स चैप्टर 8 की आयत 28 कहती है, इसी तरह आत्मा भी हमारी कमजोरियों में मदद करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा ने हमारे लिए ऐसी आहों के साथ बीच बचाव किया है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अपने देश, अपने शहर के लिए प्रार्थना के जरिए दुनिया को जीतना जोरदार रोने, गहरी आहों से किया जाएगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आत्मा में किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। नंबर 4, बिना रुके प्रार्थना करें। उहूर चैप्टर 5:17 कहता है, बिना रुके प्रार्थना करें। हम रुकते नहीं हैं, हम सुबह प्रार्थना करते हैं, हम रात में प्रार्थना करते हैं, हम हर समय प्रार्थना करते हैं। हर मौका एक लाइफस्टाइल है। हम तब तक बिना रुके प्रार्थना करते हैं जब तक हम जो करना चाहते हैं वह पूरा न हो जाए, जब तक बदलाव न आ जाए। हम रुकते नहीं हैं, हम लगे रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। यह बीच बचाव है, हम लगे रहते हैं, बिना रुके प्रार्थना करें। और फिर आखिर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भविष्यवाणी वाले शब्द का इस्तेमाल करें, प्रार्थना में भविष्यवाणी वाले शब्द का इस्तेमाल करें। यह जरूरी है और यह बहुत बहुत जरूरी है। 31 कहता है, क्योंकि प्रभु की आवाज से असीरियाई लोग मारे जाएंगे जो मिट्टी से बने हैं। प्रभु की आवाज से असीरियाई लोग मारे जाएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा, डंडे से मारा जाएगा। आपकी आवाज भगवान की आवाज बन गई है। वह बोलते हैं, जब हम उनके शब्द लेते हैं और उनके शब्द के साथ प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, तो हम बोल रहे होते हैं, उनका शब्द उतना ही अच्छा है जितना भगवान बात कर रहे हैं। और यही वे चीजें हैं जो हालात बदल सकती हैं, जो हमारे शहरों, हमारे देशों को बदल सकती हैं, और हमारे देश में और हमारे देश के लिए भगवान के पवित्र मकसद को पूरा कर सकती हैं। मैं यहीं खत्म करूंगा। आप जानते हैं, भगवान का एक आदमी कुछ कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं कि उसने क्या कहा, एक उदाहरण कि भगवान के एक आदमी ने क्या कहा जब बात अपने देश के लिए काम करने और प्रार्थनाओं से जीतने की हो। मैं कोट करता हूं, वह कहता है, आप जानते हैं, आपको यह जानना होगा कि आप असल में अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में और अपने देश के बारे में कुछ कर सकते हैं। हम हमेशा रहने वाली सच्चाइयों के रखवाले हैं। हम भगवान की शांति और कृपा के रखवाले हैं। उसने हमें इसके लिए यहाँ भेजा है और हमें अपनी जगह नहीं खोनी चाहिए। यह हमारा उस पर भरोसा है कि अगर हम उसकी मर्जी के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनेगा। इसलिए अपने उपवास और प्रार्थना से हम पवित्र आत्मा की शक्ति से कुछ भी बदल सकते हैं। भगवान के एक आदमी ने कहा, और वह कहता है कि धर्मग्रंथ हमें बताते हैं कि हमें क्राइस्ट से अधिकार मिला है। हम कुछ भी कर सकते हैं और धरती पर उसकी मर्जी पूरी कर सकते हैं, और हम ठीक यही कर रहे हैं। हम अब्राहम के वंशज हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अब बहुत हो गया। इसलिए जब हम कहते हैं कि अब बहुत हो गया, तो हमारा यही मतलब होता है। यशाया 49 श्लोक 8 में कहा गया है, मेरे नाम से तुम यह करोगे, शैतानों को बाहर निकालो। ऐसा करने का समय आ गया है। हर कम्युनिटी जहां आप हैं, भगवान के लोग, हर कम्युनिटी जहां चर्च है, आपको यह अभी सीखना होगा। आप जीसस क्राइस्ट के नाम पर भगवान के लोगों के तौर पर एक साथ आते हैं और आप शैतानों को, उन शैतानी आत्माओं को बाहर निकालना शुरू करते हैं जिनके लिए उस इलाके में प्रार्थना की जाती है। आप कहते हैं कि हम आपको बांधते हैं और हम आपको जीसस के नाम पर बाहर निकालते हैं। हम लोगों पर आपके असर के बारे में बोलते हैं। आपको नतीजे दिखेंगे। मुझे पता है क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप कमाल के नतीजे देखते हैं। और यह भगवान के बंदे रेवरेंड डॉक्टर क्रिस जैगलूम की तरफ से है, आपके स्पेशल्स के प्यार में। आखिर में मैं यह धर्म ग्रंथ लेता हूँ, यशाया 62 आयत 6-7। इसमें लिखा है, मैंने तुम्हारी बातों पर क्या कहा है, हे यरूशलेम, हम कभी चुप नहीं रहेंगे, हे प्रभु का जिक्र करने वालों, चुप मत रहो और उसे तब तक आराम मत दो जब तक वह यरूशलेम को स्थापित न कर दे और जब तक वह धरती की तारीफ न कर दे। यही हमारा फोकस है, यही हम करते हैं और यही हमें करना चाहिए। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भगवान की महिमा इस धरती को भर न दे। भगवान की महिमा का ज्ञान हमारे देश को भर दे। जब तक भगवान की इच्छा हमारे देश में पक्की नहीं हो जाती, हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम इंसानों को शैतान की बेड़ियों से आजाद नहीं कर लेते। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम लगे रहेंगे। हम सुबह प्रार्थना करेंगे। हम रात में प्रार्थना करेंगे, यह जानते हुए कि हम प्रार्थनाओं को हथियार बना सकते हैं इंसानों को आजाद करने के लिए, देशों को दुश्मन के हाथों से आजाद करने के लिए, उस दुष्ट के हाथों से जिसने इंसानों को भगवान की अच्छाई से दूर रखा। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और इसलिए हम यह करेंगे और करते रहेंगे। भगवान की स्तुति हो। भगवान की स्तुति हो। भगवान की स्तुति हो। एक बार फिर मैं अपने पिता और अपने लाइफ कोच रेवरेंड डॉक्टर क्रिस यागलोम्बे को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पादरी, दुनिया भर के लोगों के साथ ये बातें शेयर करने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। आपका भी धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना योगदान देने के लिए कृपया अपनी स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों को फॉलो करें।